නමෝ භගවතේ වාසුදේවාය ඕම් නමෝ භගවතේ වාසුදේවාය ඕම් නමෝ භගවතේ වාසුදේවාය श्रीमद् भागवतम से पाठ अध्याय 8 भगवान नृसिंह द्वारा असुर राज का वध श्लोक संख्या 5 श्री हिरण्यकशिपु वाच हे दुर्विनीता मंदात्मनं कुलभेदकर अधम स्तब्धं मतशासन उद्धृतं निश्चे त्वा अद्य यमक्षयम् श्री हिरण्यकशिपु वाच वरदान प्राप्त हिरण्यकश्यपु ने कहा हे अरे दुर्विनीता अत्यंत बेशरम धृत त्रिष्ट मंदात्मनम अरे मूर्ख कुल भेद करा परिवार को फोड़ने वाले अधम अरे नीच स्तब्धम अत्यंत हठी मत शासना मेरी आज्ञा से उद्धृतम उल्लंघन करके निश्चय मैं भेजूंगा तो तुमको अद्य आज यम शयम मृत्यु के अधीक्षक यमराज के पास अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा हिरण्यकश्यपु ने कहा अरे उद्दंड निपट दुर्बुद्धि परिवार को कलंकित करने वाले अरे नीच तुम अपने ऊपर शासन करने वाली शक्ति का उल्लंघन किया है अतएव तू हठी मूर्ख है आज मैं तुझे यमराज के घर भेज दूंगा। तात्पर्य हिरण्यकश्यपु ने अपने वैष्णव पुत्र की भर्त्सना उसके दुर्विनीत अर्थात असभ्य उद्दंड या बेशर्म होने के कारण की किंतु श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस दुर्विनीत शब्द का अर्थ सरस्वती देवी की कृपा लगाया है। उनका कहना है कि धूप का अर्थ है यह भौतिक जगत। इसकी पुष्टि भगवान कृष्ण द्वारा भगवद गीता में दिए गए उपदेश से होती है कि यह भौतिक जगत दुखालयम है अर्थात भौतिक दशाओं से ओतप्रोत है। वी का अर्थ विशेष होता है और नीत का अर्थ है लाया गया। परमेश्वर की कृपा से प्रहलाद महाराज को भौतिक जगत के लोगों को यह शिक्षा देने के लिए लाया गया था कि वे सब किस तरह इस भव सागर से बाहर निकलें। भगवान कृष्ण कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत जब सारी जनता या कुछ लोग अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं तो भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। जब कृष्ण उपस्थित नहीं रहते तो उनका भक्त उपस्थित रहता है लेकिन ध्येय एक ही होता है बेचारे बद्ध जीवों को माया के चंगुल से मुक्त करना जो उन्हें दुख देती रहती है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और भी बताते हैं कि मंदात्मन शब्द का अर्थ है मंद अर्थात अत्यंत बुरा या आध्यात्मिक अनुभूति से अत्यंत कमजोर जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या प्रहलाद महाराज उन सभी मंदों अर्थात माया वशीभूत जीवों के पथ प्रदर्शक हैं। वे इस जगत में मंद तथा दुष्ट जीवों के भी उपकारी हैं। कुल भेद कराधम प्रहलाद महाराज अपने कार्यों से उन महापुरुषों को मात कर गए जिन्होंने बड़े बड़े कुल स्थापित किए थे। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही परिवार में तथा अपने वंश को विख्यात बनाने में रुचि रखता है, किंतु प्रहलाद महाराज इतने उदार थे कि उन्होंने जीव जीव में कोई भेदभाव नहीं बरता। अतएव वे उन प्रजापतियों से भी महान थे जिन्होंने अपने वंशों को स्थापित किया था। स्तब्धम शब्द हटी या जिद्दी का सूचक है। भक्त असुरों के आदेशों की कभी परवाह नहीं करता। जब वे आदेश देते हैं तो वह शांत रहता है। भक्त तो कृष्ण के आदेशों की परवाह करता है, असुरों या अभक्तों को नहीं। वह असुरों को सम्मान नहीं करता, भले ही वह उसके पिता क्यों न हो। मत इच्छा सनो व्रतम। प्रहलाद महाराज अपने असुर पिता के प्रति आज्ञाकारी न थे। यम शयम प्रत्येक बद्ध जीव यमराज के वश में है, किंतु हिरण्यकश्यपु कहता था कि वह प्रहलाद महाराज को ही अपना मोक्षदाता मानता है, क्योंकि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु को जन्म मरण चक्कर से मुक्त करने वाले थे। वे एक महान भक्त होने के नाते एक योगी से बढ़कर थे। अतएव हिरण्यकश्यपु को भक्ति योगियों के समाज में लाया जाना था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इन शब्दों की अत्यंत रोचक व्याख्या की है, जिससे वे विद्या की देवी सरस्वती के पक्ष से समझे जा सके। कुछ बोलने के पूर्व मैं उपस्थित सभी भक्तों से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। मेरा भागवत में कोई विशेष ज्ञान या साक्षात्कार नहीं है, तो मैं जो कुछ भी टूटा फूटा बोलूँगा आप मुझे क्षमा कर दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि आपकी सेवा ठीक प्रकार से कर सकूं। ये भागवत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्कंद, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अत्यंत प्रिय खंड प्रहलाद चरित्र, और बाह्य रूप से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि प्रहलाद महाराज का तिरस्कार हो रहा है, लेकिन हमारे आचार्य इतने विद्वान हैं, इतने चतुर हैं, जेई कृष्ण भजे सेई चतुर सेई बड़ो चतुर, इतने चतुर हैं कि उन्होंने उसकी व्याख्या इस प्रकार से की है कि प्रहलाद महाराज का गुणगान ही हो रहा है। और मुख्यतः जब हम इस श्लोक को दोहरा रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे श्री हिरण्यकश्यपु उवाच, तो ये बहुत ही एक रोमांचक बात है। श्री हिरण्यकश्यपु, धृतराष्ट्र के आगे तो श्री कभी देखा नहीं, अर्जुन के आगे भी नहीं देखा श्री अर्जुन उवाच, लेकिन हिरण्यकश्यपु के आगे लग रहा है श्री हिरण्यकश्यपु उवाच। और देखा जाए तो किसका वध करने के लिए नरसिंहदेव आए थे? हिरण्यकश्यपु का। जिसका वध करने के लिए आए थे उसको सम्मान दिया जा रहा है, ये बड़ी रोमांचक बात है। हम लोग जब अहोबिलम दर्शन करने गए थे, आप में से बहुत भक्त अहोबिलम दर्शन करने गए होंगे, वहाँ नव नरसिंह मंदिर है, नौ मंदिर हैं नरसिंहदेव के, और बड़ी ही रोमांचक बात है कि हर मंदिर के द्वार पे जय विजय है। तो जिस जय विजय को वध करने के लिए भगवान आते हैं उनकी पूजा अर्चन वहाँ चल रही है। तो मुख्यतः यहाँ पर बताया जा रहा है कैसे भगवान के विशेष दूत, भगवान के विशेष द्वारपाल कोई सामान्य पुरुष नहीं थे हिरण्यकश्यपु। हम लोग रोज़ उनका नाम लेते हैं, एक बार नहीं दो बार नरसिंह आरती में, और दिन में जितनी बार नरसिंह आरती होती है उतनी बार ही उनका नाम लेते हैं। तो ये भगवान से जुड़ने का एक फ़ायदा है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हिरण्यकश्यपु ने वो सेवा की जिसमें तिरस्कार मिलेगा लेकिन भगवान को प्रसन्नता मिलेगी। कभी कभी कोई फीस्ट होती है मंदिर में, किसी भक्त को सेवा दी जाती है, कूपन चेक करो, ये सबसे खतरनाक सेवा है, क्योंकि कोई भी सीनियर वक्त आएगा कूपन नहीं लेके आएगा, कोई भी गेस्ट लेके आएगा कूपन लेके नहीं आएगा, और आपको उसको रोकना है प्रसाद लेने से। बहुत खतरनाक सेवा है, लेकिन उससे मंदिर प्रशासन प्रसन्न होता है, इसलिए करते हैं भक्त लोग। तो ये कठिन सेवाएं हैं। उसी प्रकार हिरण्यकश्यपु को पता था हमेशा हमेशा के लिए उनको लोग कोसेंगे, देखो फूल जैसे प्रहलाद को इतना कष्ट दिया, देखो नरसिंहदेव का इतना तिरस्कार किया, ब्राह्मणों को इतना तिरस्कार किया, इतना कष्ट दिया, लेकिन फिर भी हिरण्यकश्यपु वो सेवा करते हैं भगवान की, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता थी वीर रस आस्वादन करने की। और वो वीर रस का आस्वादन करने के लिए हिरण्यकश्यपु वो सेवा करते हैं, इसलिए श्री हिरण्यकश्यपु रुवाच। इस तरह बहुत उदाहरण शास्त्रों में हैं, जैसे भीष्मदेव हैं महाजन, लेकिन लड़ते हैं कौरवों की साइड से, उनके पक्ष से युद्ध करते हैं क्योंकि भगवान चाहते थे उनके द्वारा एक उदाहरण प्रस्तुत हो। चैतन्य चरितामृत में भी उदाहरण आता है छोटा हरिदास का। हम सब जानते हैं कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब यात्रा के लिए दक्षिण भारत गए, छोटा हरिदास को साथ में लेकर के गए, और किसी कारणवश वह अपने पद से भ्रमित हो गए, भट्टहारियों के प्रलोभन में आ गए, और सॉरी मैं काला कृष्णदास को बता रहा हूँ, और फिर वो भट्टहारियों के उसमें आकर के चैतन्य महाप्रभु से विलग हो गए। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनको पकड़ करके वापस लाए, तो चैतन्य महाप्रभु का गुणगान होता है कि देखो ये भक्त कितना भाग्यशाली है कि भगवान उनको चोटी से पकड़ करके वापस ले करके आए। तो कुछ ना कुछ शिक्षा देने के लिए भगवान के भक्त ये सेवा करते हैं, और ये सेवा के माध्यम से भक्त भगवान के और भी निकट चले जाते हैं। लेकिन यहाँ हिरण्यकश्यपु बहुत क्रोध में है। क्यों क्रोध में है? हिरण्यकश्यपु के पास क्या नहीं था? उनकी आंखों की एक इशारे से देवता डर जाते थे। मान लीजिए हमारे बगीचे में आम का पेड़ है तो हमको आम देगा, उनके बगीचे में जो भी पेड़ हो उनको आम चाहिए तो उसको आम ही देना पड़ेगा, कटहल का पेड़ को भी आम देना पड़ेगा, इतना डरते थे। मान लीजिए अभी अक्टूबर के महीने में थोड़ी ठंडक हो जाती है, लेकिन वृंदावन में अभी भी गर्मी है। हिरण्यकश्यपु यहाँ आते वो बोलते नहीं हमको ठंडी चाहिए, तो यहाँ पर तापमान 5 डिग्री हो जाता है। इस तरह व्यवस्था हिरण्यकश्यपु के पास थी। उनके पास क्या कमी थी? पूरी दुनिया में हिरण्यकश्यपु की पूजा हो रही थी, यहाँ तक कि भागवत बताती है नारद मुनि तक अपनी वीणा पे हिरण्यकश्यपु के दरबार में हिरण्यकश्यपु की स्तुति करते थे। नारद मुनि खुद ही बोलते हैं मैं खुद करता हूँ। तो ऐसी स्थिति में हिरण्यकश्यपु के पास क्या कमी थी? अगर एक 5 साल का बालक उनको सम्मान नहीं कर रहा है उसमें क्या कमी थी? ये भौतिक संसार का लक्षण है। हमारे शरीर में सब कुछ अच्छा हो, एक उंगली का एक नाखून थोड़ा सा खिंच जाए, थोड़ा सा दर्द हो जाए, हमारा पूरा ध्यान उधर चला जाता है। भौतिक संसार में किसी भी प्रकार से खुश व्यक्ति नहीं हो सकते। जब हम छोटे थे तो डिस्कवरी चैनल देखते थे, आप सब ने भी देखा होगा, तो उधर जो जंगल में क्रियाएं होती हैं उनको दर्शित किया जाता है। तो मैं देख रहा था एक बार एक शेर उसको दिखा रहे थे, और उस शेर के सामने एक चिड़िया बार बार आकर के उसके मस्तक पे बैठ रही थी। अब शेर से सभी डरते हैं, लेकिन वो चिड़िया जब बैठ रही थी तो शेर को बड़ी परेशानी हो रही थी, बार बार वो मुँह हिला रहा था, बार बार परेशान हो रहा था, लेकिन चिड़िया भी बड़ा मजा ले रही थी, बार बार आकर के बैठ रही थी। ये शेर जा करके पेड़ में टक्कर दे देता है, उसको लगता है सिर पे कुछ लगा है, चिड़िया उड़ जाती है, फिर आकर के बैठ जाती है। एक छोटी सी चिड़िया शेर का इतना अपमान कर सकती है। उसी प्रकार से हिरण्यकश्यपु को लग रहा था मैं सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन ये बालक मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, मैं भय दिखा रहा हूँ, मैं इसको शिक्षा दे रहा हूँ हर प्रकार से, लेकिन ये बालक मेरी बात नहीं मान रहा है। कई बार हम अखरोट तोड़ करके खाते हैं, वो अखरोट टूटता ही नहीं है, कभी हाथ से मारो, जमीन पे मारो, कोई पत्थर से, कभी टूटता ही नहीं है, हमको गुस्सा आता है उसको साइड में रख देते हैं। लेकिन ये हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज को साइड में भी नहीं रख सकता, खुद का बालक है। लोग क्या बोलेंगे, इतना बड़ा आदमी है खुद का बालक ही उनका सम्मान नहीं करता। तो उस प्रकार प्रहलाद के द्वारा सम्मान ना मिलने से हिरण्यकश्यपु बहुत क्रोधित हो रहे हैं। और ये सिद्धांत को दर्शाते हैं कि भौतिक जगत में कोई व्यक्ति कितना ही ऊपर चला जाए वो व्यक्ति पूर्ण रूप से आनंद नहीं प्राप्त कर सकता। कल हम लोग एक कक्षा में चर्चा कर रहे थे कैसे जो सिनेमा होता है, जो हम लोग मूवीज़ पहले देखे होंगे सबने, उसमें लास्ट में एक बहुत एक कॉमन कमेंट आता था, एंड दे लिव्ड हैप्पीली आफ्टर, उसके बाद सब ठीक हो गया, लास्ट में वो लोग हमेशा से अभी सुख से रहेंगे, ऐसी लाइन आती थी। ये निपट मूर्खता की निशानी है, भौतिक जगत में कभी ऐसा होता नहीं है। भगवान के खुद के परिवार में द्वारका में अंत में क्या हुआ हम सब जानते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, पूर्ण आनंद के स्रोत हैं, उनके स्वयं के परिवार में अंत में क्या हुआ, आपस में लड़ करके उन्होंने एक दूसरे को मार दिया। तो उस प्रकार भगवान अनेक अनेक लीलाओं से ये दर्शाते हैं कि हम इस भौतिक जगत में जो दुखालय है खुश होने का प्रयास ना करें, क्योंकि हम कितना भी खुश होने का प्रयास करें यहाँ पर हम खुश नहीं हो सकते। करेले के जूस में हम जितना भी मिठाई डालने का प्रयास करें वो कड़वापन कभी छोड़ेगा नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ हिरण्यकश्यपु नाराज हो रहे हैं और प्रहलाद को इस तरह देख रहे हैं, जो यहाँ पर अपशब्द बाह्य रूप से लग रहे हैं वो हिरण्यकश्यपु प्रहलाद के अंदर देख रहे हैं। वास्तव में हम दूसरों को उसी तरह देखते हैं जो अवगुण हमारे अंदर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए धूप के मौसम में कोई व्यक्ति पीला चश्मा पहन के बाहर निकल जाए तो वो सबको पीलिया का रोग ही बताएगा, अरे आपको भी पीला पीला हो रहा है, आपको भी पीला पीला हो रहा है। कोई नीला चश्मा पहन के निकल जाए तो सब कुछ बताएगा, अरे कृष्ण बलराम मंदिर को नीला क्यों पेंट कर दिया, वास्तव में ना नीला है ना पीला है, ये चश्मा रंगीला है, ये चश्मे का कलर है। ये हमारा जो दृष्टिकोण है उसके आधार पर हम जगत को देख रहे हैं। हिरण्यकश्यपु उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज को अपशब्द बोल रहा है। और भागवत में इस तरह बहुत सारे वृत्तांत आते हैं, जब इंद्र कृष्ण को वाचाल बालिशम इस तरह अलग अलग अपशब्द बोलते हैं, वास्तव में कृष्ण की स्तुति हो रही है। वराहदेव को भी इस तरह बहुत कुछ बोला गया है, जानवरों में निकृष्ट है, इस तरह गंदा है, इस तरह बहुत सब अपशब्द बोले गए हैं। और यहाँ प्रहलाद महाराज को भी इस तरह अपशब्द बोले जा रहे हैं, लेकिन हर शब्द का एक अलग अर्थ निकल सकता है। ये हमारे आचार्य इसमें एक्सपर्ट है, कैसे तिरस्कार को भी गुणगान बताना है आचार्य लोग जानते हैं। जैसे एक बार एक बच्चा स्कूल नहीं गया तो अगले दिन टीचर ने उसको पूछा, भाई तुम कहाँ थे, तो बोला टीचर मैं गिर गया था और आँख लग गई थी। तो टीचर ने बोला ठीक है आप जाइए। तो दोस्त बोलता है कि अरे तुम कहाँ गिर गए थे जो तुम्हें लग गई थी, बोले मैं बिस्तर पे गिर गया था और आँख लग गई थी। तो इस तरह बहुत सारी एक्सप्लेनेशन हो सकती है, जैसे आचार्य लोग यहाँ पर बता रहे हैं कैसे वास्तव में तिरस्कार नहीं है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये तिरस्कार नहीं है गुणगान है तो नरसिंहदेव क्रोधित क्यों हो गए, ये भी सोचने वाली बात है। अगर हिरण्यकश्यपु के शब्द प्रहलाद को मुख्यतः सम्मान ही दे रहे हैं तो नरसिंहदेव इतने क्रोध में क्यों आ गए, इसलिए आ गए क्योंकि शब्दों से ज़्यादा महत्व होता है चेतना का। पूतना किस तरह वेश धारण करके आई थी लेकिन विचार था कृष्ण को नुकसान पहुंचाना, उसी प्रकार यह हिरण्यकश्यपु का विचार क्या था, प्रहलाद को नुकसान पहुंचाना। और इसीलिए भगवान नृसिंहदेव बहुत क्रोधित हो गए कि आप किस तरह प्रहलाद को नुकसान पहुंचा सकते। लेकिन अगर प्रेम से कोई कठोर शब्द भी बोल दिए जाएं तो वो बहुत ही मधुकर होते हैं, बहुत ही मधुर होते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि गोपियों की गाली मुझे वेद स्तुति से भी ज़्यादा मीठी लगती है। और ये कृष्ण का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं, हम सब ने जो भागवत पढ़ी है या कृष्णा बुक पढ़ी है, गोपियों का संवाद हो कृष्ण यशोदा का संवाद हो तो अच्छा लगता है। एक चैप्टर है वेद स्तुति लास्ट में, वो चैप्टर पढ़ते पढ़ते बहुत लोगों को योग निंद्रा आ जाती है। तो ये हम लोग खुद देख सकते हैं कैसे प्रेम में कटु शब्द भी बोले जाएं तो भगवान को बहुत ही प्रिय लगते हैं। लेकिन यहाँ हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को तिरस्कृत कर रहे हैं। और कोई ये बोल सकता है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जिस तरह टिप्पणी कर रहे हैं तो ये तो एक तरह का एज इट इज़ ट्रांसलेशन नहीं, हम लोग सबको गीता पाठते हैं भगवद्गीता एज इट इज यथारूप। तो ये यथारूप ट्रांसलेशन तो नहीं है, वास्तव में यही यथारूप है। एक बार श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे रहे थे कि कलकत्ता में एक बहुत ही बड़े वकील थे और उनके पास जो कैदी थे उनका जो केस लड़ रहे थे उस गुनाहगार को उन्होंने लॉ को ट्विस्ट करके छुड़ा लिया। तो बाद में सरकार को वो नियम को ही चेंज करना पड़ा। तो प्रभुपाद उस उदाहरण से बता रहे थे कि कैसे सरकार के लोगों का ये कर्तव्य है कि कोई व्यक्ति सही अर्थ का गलत अर्थ ना निकाल दे। उसी प्रकार हमारे आचार्य हैं भगवान के विशेष दूत, वो हमें समझाते हैं कि नहीं, कोई इसी श्लोक को बोल करके बाद में बताएगा देखो प्रहलाद तो ऐसे थे, आप लोग ऐसे महाजनों की पूजा करते हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं, कृष्ण तो ऐसे हैं, इतने उनमें अपगुण हैं, आप ऐसे भगवान की अर्चना करते हैं। तो विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर जैसे आचार्य कोई भी स्कोप नहीं छोड़ते कि नहीं हमारे भगवान या हमारे भगवान के भक्त हमेशा श्रेयस करें। तो यहाँ पर हम लोग परंपरा के महत्व को भी देखते हैं, कैसे परंपरा का महान महत्व है। एक बार श्रील प्रभुपाद दक्षिण भारत में प्रवचन कर रहे थे और एक व्यक्ति सभा में से उठ करके चुनौती देता है कि स्वामी जी आपकी भगवद्गीता में ऐसा क्या विशेष है, आपने तो मध्वाचार्य रामानाचार्य पूर्ववर्ती आचार्यों की टीका को थोड़ा सा इधर उधर जमा करके अपने अपने तात्पर्य बता करके किताब सेल कर रहे हैं, तो क्या नया है आपकी पुस्तक में। प्रभुपाद बोलते हैं मेरी विशेषता ये है कि कुछ नया नहीं है, ये मेरी विशेषता है कि मैं पूर्ववर्ती आचार्यों को ही दोहरा रहा हूँ, यही मेरी विशेषता है। यहाँ परंपरा का बहुत ही विशेष गुण बताया गया है। और हम इस तथ्य को जान करके बहुत विश्वास प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में कि कैसे भगवान या भगवान के भक्त हमेशा हमारी मदद करने, हमें शरण देने के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। ये प्रभुपाद तात्पर्य बहुत सुंदर बात कर रहे हैं कि या तो भगवान उपस्थित होते हैं या भगवान के भक्तों को भेजते हैं। हम लोग कभी भी अनाथ नहीं, अनाथ हे रनाथ डाकी तब नाम, हे भगवान आप अनाथों के नाथ हैं। और अनाथों के नाथ कैसे होते हैं, हो सकता है हम कृष्ण बलराम को सदा नहीं देख पाए लेकिन भगवान के भक्त हमेशा उपस्थित रहते हैं जीवात्माओं को उद्धार करने के लिए। तो प्रहलाद महाराज ऐसे ही एक महान भक्त हैं जिनके अंदर कोई भी बुरा व्यवहार, कोई भी अपगुण नहीं हो सकता, कोई भी दुर्गुण नहीं हो सकता। जैसे कि भौतिक जगत में कई बार लोग एक दूसरे को बड़ाई करते हैं, पीठ पीछे फिर बुराई करते हैं। जैसे एक बार एक गधे ने ऊँट को बोला अहो रूपम, वाह तुम कितने सुंदर दिखते हो। अभी ऊँट की सुंदरता हम सब जानते हैं, ऊँट बोला जिंदगी में पहली बार किसी ने तारीफ करी है। तो ऊँट भी बोलता है गधे को अहो अहो स्वरम, तुम्हारी क्या आवाज़ है, वाह वाह। तो इस तरह एक दूसरे की पीठ खुजाने में भौतिक जगत में बहुत मज़ा आता है, लेकिन ये शुद्ध भक्त भगवान के इस मान सम्मान की अपेक्षा नहीं करते। वो बाह्य रूप से गलती करते दिखें तो भी उनके अंदर कोई गलती नहीं है। जैसे कि शास्त्र में बताया गया है यद्यपि हो नित्यानंद सुर बढ़ी जाए तथापि हो तेतार नित्यानंद राय। आप नित्यानंद प्रभु को हो सकता है शराब की दुकान पर देखे फिर भी वो नित्यानंद प्रभु हैं, हो सकता है कोई जगाई मदाई का उद्धार करने के लिए जाए। तो इस तरह भक्तों के विशेष गुण होते हैं। एक महान आचार्य हमारे दक्षिण भारत में हुए श्रीपाद रामानुजाचार्य, उनके निजी सेवक थे गोविंद, और वो गोविंद की कुछ हरकतें ऐसी थीं कि लोग वाक बड़े विस्मित हो जाते थे। एक दिन वो एक सांप के हाथ में, सांप के मुख में हाथ डाल करके कुछ कर रहा था और सांप बड़ा तड़प रहा था। भक्त लोगों ने देखा ये कैसा वैष्णव है, वैष्णव होते हैं पर दुख दुखी, ये सांप के मुंह में हाथ डाल करके उसको क्या पीड़ा पहुंचा रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, सेक्रेटरी लोगों को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, हम बाद में गुरु महाराज के पास जाने नहीं देंगे। तो बोला नहीं कुछ। कुछ दिन बाद देखा कि रामानाचार्य की जो शयन शैया थी वो शयन शैया पर बिस्तर पर ये गोविंद लेटा हुआ है। अब शिष्यों को बड़ा गुस्सा है, बोले सांप के साथ तो खेल रहा था ठीक है, ये गुरु महाराज के बिस्तर पर कैसे सो रहा है। तो ये गोविंद को उठाने के लिए आए, गोविंद उठो, गोविंद उठ के चला गया। शिष्य ने बोला अब तो कंप्लेन करनी चाहिए। फिर भी कुछ भक्तों ने बोला ठीक है अभी सही मौका देख करके बोलेंगे। कुछ दिन बाद भगवान का महाप्रसाद श्रीपाद रामानाचार्य के लिए आया और शिष्यों ने देखा कि ये गोविंद गुरु के खाने के पहले वो सभी आइटम खा रहा है। अब शिष्यों से रहा नहीं गया, ये बहुत बड़ी बात है। प्रसाद बड़ा सीरियस मैटर होता है भक्तों के समाज में, लेकिन अरे आप गुरु से पहले प्रसाद खा रहे हैं, सारे मेन आइटम तो आप ही खत्म कर देंगे, गुरु महाराज को क्या मिलेगा। उन्होंने जाके रामानाचार्य को शिकायत की। रामानाचार्य ने गोविंद को बुलाया, गोविंद तुम्हारे बारे में कंप्लेन आई है। गोविंद बताते हैं क्या कंप्लेन आई है। बोले पहले तो वो जो सांप को तुम छेड़ रहे थे क्या कर रहे थे। बोले गुरु महाराज सांप के गले में एक कांटा फंस गया था, मैं उसको निकाल रहा था, बड़ी पीड़ा में था। अच्छा ठीक है, मेरे बिस्तर पे क्यों सो रहे थे। बोले गुरु महाराज मेरा कर्तव्य है कि आपको मैं सुख प्रदान करूं। आप अलग अलग जगह विचरण करते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग आपको शैया मिलती हैं, आपको किस शैया पे आराम मिलेगा किस पे नहीं मिलेगा ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं टेस्ट कर रहा था। हम लोग ना करें ये उदाहरण के लिए है। और तीसरा बोले ठीक है शैया का समझ में आता है, प्रसाद में क्या दिक्कत है। बोले गुरु महाराज आप जिस तरह प्रचार कर रहे हैं बहुत सारे लोग आपसे ईर्ष्यालु हैं और आपको विष दे करके मारने का आयोजन है, इसलिए मैं मर जाऊं तो चलेगा लेकिन आपका जीवन जरूरी है। तो ये शिष्य का कर्तव्य है, ये भक्त का कर्तव्य है कि किसी भी परिस्थिति में वो भगवान की गुरुदेव की सेवा करे, चाहे उसमें यश मिले अपयश मिले, बाह्य रूप से देखने को मिले अरे कितने अवगुण हैं, लेकिन वो गुणों से भरे हुए हैं। हम लोग नंदगांव गए थे, वहाँ पर एक पंडा बता रहे थे कि कैसे वहाँ के लोग अक्रूड़ को बहुत गाली देते हैं कि अक्रूड़ तुम कितने क्रूड़ हो, तुम अक्रूड़ नहीं हो तुम क्रूड़ हो, तुम्हारा पाषाण जैसा हृदय। लेकिन भगवान की लीला में ये सहयोग देने के लिए कुछ रोल ऐसे भी होते हैं जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाएं और जिनमें कोई श्रेय भी ना मिले, और इसी को शुद्ध भक्ति कहा जाता है। अन्य अभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेनु कृष्णानुशीलनम, भगवान कृष्ण के अनुकूल हो सकता है हमारे अनुकूल ना हो, हमारे मान प्रतिष्ठा के अनुकूल ना हो, लेकिन कृष्ण के अनुकूल हो। जैसे एक व्यक्ति एक बार मौन व्रत धारण करते हैं, इस्कॉन के भक्त बोलते अरे बड़े अपराध होते हैं, इससे अच्छा मौन व्रत रखते हैं। तो मौन व्रत रखे हुए हैं, सब भक्त समझा रहे हैं प्रभु जी इस्कॉन में ऐसा मौन व्रत नहीं होता है, आप अच्छी अच्छी बातें बोलो। नहीं नहीं मौन व्रत कोई भी बात एकदम शांत, बहुत भक्त बहुत कुछ समझा के गए वो कुछ नहीं बोल रहा है। फिर एक भक्त कान में एक चीज बोल करके जाता है, वो चिल्लाना शुरू करता है नहीं 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 नहीं। लोग बड़े विस्मित हो जाते हैं, अरे क्या बोल के गया ऐसा कान में। वो भक्त कान में बोल के गया था टेम्पल प्रेसिडेंट बनोगे क्या, ये टेम्पल प्रेसिडेंट बनना इतना खतरनाक काम है जिसमें सब लोग आपको कुछ ना कुछ तिरस्कार करेंगे। अगर कोई सक्सेस है तो इंचार्ज की, और अगर कोई निंदा है तो टेम्पल प्रेसिडेंट। तो उस तरह सेवा कई बार बाह्य रूप से दिखता है कि अब